लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलिसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओ, हमने अपने पिछले प्रसारण में तीसरे अध्याय पर दुनिया में युवाओं के विभिन्न अनुभवों के बारे में चर्चा की। आज हम युवाओं पर डिजिटल वातावरण के प्रभाव पर अपनी चर्चा करेंगे। डिजिटल वातावरण समकालीन दुनिया की एक विशेषता है। मानवता का एक व्यापक हिस्सा एक साधारण और निरंतर तरीके से उसमें डूबा हुआ है। इसका संदर्भ संचार माध्यम की उपयोगिता मात्र से नहीं है, वरन यह एक उच्चतम डिजिटल संस्कृति में जीवन यापन करना है, जो समय और परिस्थिति के आधार पर हमारी व्यक्तिगत समझ और विचारों को प्रभावित करता है। यहाँ दूसरे और विश्व के प्रति हमारी परिस्थिति वातावरण को प्रभावित करती है, जिसके अनुरूप हम दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए सीखते, सूचनाओं को प्राप्त करते और एक संबंध में प्रवेश करते हैं। यह सच्चाई की ओर वह नजरिया है, जहाँ दृश्यमान चीजें हमें सुनने और पढ़ने की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती हैं, जिसके अनुरूप हम अपने जीवन में अपने ज्ञान की बातों को देखते और अपने तर्क वितर्क का विकास करते हैं। नेटवर्क के तंत्र और सामाजिक संचार माध्यमों ने हमारे लिए वह स्वरूप तैयार किया है, जहां हम अपने को एक नए रूप में दूसरों से जुड़ा हुआ पाते हैं। ये जन सामान्य लोगों के लिए मिलन के वे स्थल हैं, जहां युवा अपना अधिकतम समय व्यतीत करते और सहज ही एक दूसरे से मिलते हैं। विशेषकर विश्व के कुछ धर्मों के संबंध में, यद्यपि यह सबों के लिए एक समान तरीके से उपलब्ध क्यों ना हो, संचार के इन माध्यमों में हम एक अति विशिष्ट अवसर को पाते हैं, जहां युवा वार्ता करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते तथा सूचना और ज्ञान संग्रहित करते हैं। डिजिटल दुनिया सामाजिक और राजनीतिक रूप में हमें जुड़े रहने हेतु मदद करती है, जो सक्रिय नागरिकता का एक स्वरूप है। यह हमें अति संवेदनशील लोगों के अधिकारों के सार्वजनिक उल्लंघन के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रूप से जानकारी प्रसारित करने वाली एक सुविधाजनक साधन बन सकती है। बहुत सारे देशों में इंटरनेट और सामाजिक संचार माध्यम अपने में इस तरह सुदृढ़ रूप से स्थापित किए गए हैं, जिसके द्वारा युवाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। साथ ही इसके द्वारा कई तरह के प्रेरितिक कार्यक्रमों और पहलों को संचालित किया जा सकता है। संत पापा कहते हैं कि फिर भी इस संपूर्ण बात को पूरी तरह से समझने हेतु हमें यह समझने की जरूरत है कि हर मानव में हम जिस तरह एक कमी को पाते हैं, उसी भांति इसकी अपनी सीमाएं और अपनी कमजोरियां हैं। यह हमारे लिए लाभप्रद नहीं है कि हम संचार माध्यमों को सिर्फ दृश्यमान संपर्क स्वरूप ही देखें। वास्तव में डिजिटल वातावरण अपने में एक तरह से अकेलेपन है, जहां हम तोल मोल, शोषण और हिंसा को पाते हैं, जो कई बार गंभीर डार्क वेब मामलों से जुड़ा होता है। डिजिटल संचार माध्यमों के द्वारा उन व्यक्तियों का हाल बयां किया जा सकता है जो नशे की जोखिम में हैं, अपने में अकेले और धीरे धीरे दूसरों के संग अपने ठोस संबंध को विखंडित कर लेते हैं तथा एक सच्ची व्यक्तिगत संबंधों में प्रवेश करने हेतु अपने लिए एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। हम सामाजिक संचार माध्यमों के द्वारा नए तरह के हिंसा के कई रूपों को पाते हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क द्वारा धौंस दिखाना। इंटरनेट के द्वारा आज अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, जहां हम लोगों को शारीरिक शोषण का शिकार या जुआ खेलने में संलग्न पाते हैं। श्रोताओ, हम इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि डिजिटल संचार माध्यम के द्वारा एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था संचालित की जा रही है, जहां अति सूक्ष्म तरीके से हमारे सोचने समझने के तरीकों में विराम लाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हेराफेरी हेतु विभिन्न रूपों में विश्वासपूर्ण तंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह के कार्य स्वरूप का परिणाम यह होता है कि एक तरह से विचार रखने वाले एक ओर मिल जाते तथा अपने को वाद विवाद से तटस्थ कर लेते हैं। यह निकटता अपने में मनगढ़ंत समाचारों और सूचनाओं, पूर्वाग्रह और घृणा को प्रसारित करने हेतु मदद करती है। झूठे समाचारों में बढ़ोतरी अपने में उस संस्कृति के विस्तार को बयां करती है, जहां हम सच्चाई के विनाश को पाते और जो अपने में विशेष मतलबी उद्देश्यों से सम्मिश्रित होती है। इस तरह ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से कुछ एक व्यक्तियों की प्रतिष्ठा में संशय उत्पन्न हो जाता है। कलिसिया और उसके प्रेरित अपने में इस तरह की घटनाओं से अछूते नहीं है। युवाओं की धर्म सभा के दौरान करीबन 300 युवाओं के एक दल ने, जो विश्व के विभिन्न देशों से थे, एक दस्तावेज तैयार किया जिसकी विषय वस्तु थी, ऑनलाइन संबंध अमानवीय हो सकता है। डिजिटल माहौल एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनशीलता को खत्म कर देता और हम अपने में अंधे बन जाते हैं और हम स्वयं अपने में विचार मंथन करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। अश्लीलता जैसी समस्या युवाओं में यौन विचारों को विकृत कर देती है। इस तरह इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी एक भ्रामक पूर्ण समानांतर वास्तविकता का निर्माण करती है, जो मानवीय गरिमा की उपेक्षा करती है। बहुत से लोगों के लिए आभासी दुनिया में गोते लगाना उन्हें अपने परिवारों, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से अलग कर दिया है और वे अपने को डिजिटल प्रवासन का शिकार पाते हैं। यह उन्हें अपने में अकेलेपन की दुनिया में ले चलता। वे अपने में विभिन्न तरह के प्रयोग करते, जिसका परिणाम यह होता है कि शारीरिक रूप में एक स्थान पर रहते हुए भी वे अपने में पूरी तरह से आधारहीन अनुभव करते हैं। युवाओं का जोश और अति उत्साही जीवन, जो अपने में व्यक्तित्व की पुष्टि करना चाहते हैं, आज अपने में एक नई चुनौती का सामना करते हैं, जैसे कि हकीकत और आभासी दुनिया में प्रवेश, जहां वे अकेले प्रवेश करते हैं। मानो वे एक अनदेखा वैश्विक महाद्वीप में अपने कदम रख रहे हों। वे युवा गण हैं जो सबसे पहले इस संश्लेषण से प्रभावित होते, जो उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। वे उनका चुनाव करते जो उनकी संस्कृति से विशिष्ट संबंध रखता हो और साथ ही जो वैश्विक है। इसका अर्थ यही है कि उन्हें इस बात को खोजने की जरूरत है, जिससे वे आभासी संदर्भ से अच्छे और स्वास्थ्य संचार की ओर बढ़ सके। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं के संबंध में प्रकाशित विश्व प्रेरितिक संबोधन क्रिस्तुस विविध पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 24 मार्च को वेटिकन के संत मार्था प्रार्थनालय में ख्रिस्त्याग अर्पित करते हुए उन डॉक्टरों एवं पुरोहितों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके लिए प्रार्थना की जो कोविड-19 से पीड़ित रोगियों की मदद करते हुए मौत के शिकार हो गए। उन्होंने प्रवचन में आलस्य के पाप से बचने की चेतावनी दी। कोरोना वायरस से संक्रमित होकर कुल 24 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि करीब 500 स्वास्थ्य कर्मी वायरस से संक्रमित हैं और महामारी से मरने वाले पुरोहितों की संख्या अब 50 हो चुकी है। प्रवचन में संत पापा ने संत योहान रचित सुसमाचार पर चिंतन किया, जिसमें यीशु बेथेस्दा कुंड के पास एक अर्धांग रोगी को चंगा करते हैं। संत पापा ने आलस्य के पाप को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, आज की धम्मविधि हमें पानी पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। पानी मुक्ति का प्रतीक है, क्योंकि यह मुक्ति का साधन है। जल विनाश का भी साधन है, किंतु इन पाठों में यह मुक्ति का साधन है। पहले पाठ में उस पानी का जिक्र किया गया है जो जीवन देता है, समुद्र के पानी को शुद्ध करता और चंगाई प्रदान करता है। सुसमाचार पाठ में उस कुंड का वर्णन है जहां बीमार लोग नहाने जाते थे और चंगे हो जाते थे। कहा जाता है कि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी को हिला देता था। पानी के लहराने के बाद सबसे पहले कुंड में उतरने वाला चाहे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो अच्छा हो जाता था। कुंड के पास एक व्यक्ति था जो 38 सालों से बीमार था। 38 सालों से वह चंगा होने का इंतजार कर रहा था। संत पापा ने कहा कि यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि वह व्यक्ति इतने सालों से चंगा होने हेतु दूसरों की मदद का इंतजार कर रहा था। यीशु उसे देखकर कहते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? तब बीमार व्यक्ति जवाब देता है, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड पर उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। संत पापा ने कहा कि वह व्यक्ति हमेशा देर करता था। तब यीशु ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाकर चलो। यह हमें उस व्यक्ति के मनोभाव पर ध्यान देने हेतु प्रेरित करता है। वह बीमार था, किंतु लगता है कि वह थोड़ा चल सकता था, पर वह हृदय, आत्मा, निराशा, उदासी और आलस्य की बीमारी से ग्रसित था। यही मनुष्यों की बीमारी है। हम जीना चाहते हैं, चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हमेशा दूसरों की शिकायत करते। 38 सालों से बीमार व्यक्ति चंगा तो होना चाहता था, किंतु अपने आप से कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों से ही आशा कर रहा था। संत पापा ने कहा कि पिछले रविवार के पाठ में हमने जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे सुना था कि वह किस तरह खुशी और दृढ़ निश्चय के साथ चंगाई प्राप्त किया। उसने किसी की शिकायत नहीं की, बल्कि जिम्मेदारी के साथ संहिता के पंडितों को जवाब दिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने जीवन के साथ शिकायत नहीं करनी चाहिए। संत पापा ने कहा कि कई ख्रिस्तीय इसी आलस्यपन में जीते हैं। अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, केवल शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलस्यपन एक जहर है, एक कुहासा है जो हमारी आत्मा को ढक लेता और हमें जीने नहीं देता है। यह नशीली पदार्थ के समान है जिसका स्वाद अच्छा लगता, किंतु हम उदास होकर आलसी बनकर रहने की आदत बना लेते हैं। संत पापा ने कहा कि हम उस जल की याद करें जो शक्ति और जीवन का प्रतीक है, जो हमें बपतिस्मा में प्राप्त होता है। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमें पाप की बुराई एवं कुरूपता को समझने की कृपा प्रदान करें। मिस्सा के अंत में संत पापा ने पौत्र संस्कार की आशीष प्रदान की। संत कमेलुस की पुत्रियों के धम्म समाज की धम्म बहनें कोरोना वायरस आपातकाल का सामना साहस के साथ कर रही हैं, क्योंकि वे बीमार लोगों की सेवा करती और कई बार अपने जीवन को भी जोखिम में डालती हैं। कई लोगों की नजरों से छिपी ये तीन धम्म बहनें इन दिनों कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही हैं। चाहे वे नर्स हों या एकांत मठवासी, गरीबों की मदद करती या परिवारों का साथ देती हों, उनके दो शक्तिशाली हथियार हैं प्रार्थना और स्नेह। संत कमेलुस की धम्म बहन जिनका कार्यजम है बीमार एवं बुजुर्गों की सेवा करना। वे महामारी शुरू होने के समय से ही डटकर अपनी सेवा दे रही हैं। इटली में कमेलियंस धम्म बहनों के 5 अस्पताल हैं, जो रोम, त्रेंतो, त्रेविजो, ब्रेशा और क्रेमोना में स्थित हैं। उत्तरी इटली में स्थित त्रेविजो, ब्रेशा और क्रेमोना वे स्थल हैं जहां कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक है। त्रेविजो स्थित संत कमेलो अस्पताल की निदेशिका एवं धम्म समाज की महासचिव सिस्टर लेंसी ने वैटिकन रेडियो से कहा, हमारे सभी संस्थाओं में नर्स धम्म बहनें निस्वार्थ रूप से अपना जीवन जोखिम में डाल रही हैं, किंतु धम्म बहनें भयभीत नहीं हैं। हम संत कमेलुस की धम्म बहनें 3 सुसमाचारी सलाहों, शुद्धता, निर्धनता एवं आज्ञा पालन के अलावा चौथा व्रत लेती हैं। वह है बीमारों की सेवा करना, चाहे इसके लिए जान ही गंवाना क्यों ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह व्रत आज और अधिक अर्थपूर्ण हो गया है, जब धम्म बहनें कोविड-19 संक्रमण का सामना करते हुए अलग किए गए अस्पतालों में जाती हैं। सिस्टर लेंसी ने बतलाया कि त्रेविजो अस्पताल में संक्रमित रोगियों के लिए करीब 100 से अधिक बेड हैं, किंतु समस्याएं अनंत हैं क्योंकि वहां संसाधनों की कमी है। उन्होंने कहा, एक धम्म बहन के रूप में जिनका मिशन एक संदेशवाहक के रूप में यीशु के मिशन को पूरा करना है, संत कमेलुस की पुत्रियां सामूहिक साहस एवं तत्परता में पीड़ितों के नजदीक रहने हेतु कुछ भी करने का बल प्राप्त करती हैं। उनका पूर्ण समर्पण एवं तत्परता आकर्षित करने वाला है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि हम भी मर सकते हैं, किंतु प्रार्थना एवं संत कमेलुस से निवेदन हमें बल प्रदान करता है। संत पापा फ्रांसिस ने बुलाहट के लिए 57वें विश्व दिवस के अवसर पर एक संदेश प्रकाशित कर सभी पुरोहितों, धर्म समाजों एवं विश्वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, रोटी का चमत्कार जिसने भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया था, उसके बाद यीशु ने चेलों से कहा कि वे नाव पर चढ़ें और झील के दूसरे किनारे की ओर बढ़ें, और वे उनसे अलग हो गए। चेलों द्वारा नाव से झील पार करना हमारी जीवन यात्रा के समान है। यद्यपि हमारे जीवन की नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हम बेचैन होकर सुरक्षित स्वर्ग की ओर नजर डालते हैं, समुद्र की कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी करते हैं, साथ ही खेवन हारे पर भी विश्वास करते हैं कि वे हमें सही लक्ष्य पर पहुंचा देंगे। कई बार नाव बह जाती है तथा मृग तृष्णा में खो जाती है, और कठिनाइयों, संदेह एवं भय के तूफानों से थपेड़ी जाती है। संत पापा ने कहा कि कई बार नाजरेत के गुरु का अनुकरण करने हेतु बुलाए गए लोगों के हृदयों में भी ऐसा होता है।
और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।